राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद नितय गौर हरि बोल नितय गौर हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणार विंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी श्री सुदर्शन की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय श्लोक संख्या 75। व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतत् गुह्यम् अहम् परम् योगम् योग ईश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः। व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यमहं परम् योगम् योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयम्। व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यमहं परम् योगम् योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयम्। व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यमहं परम् योगम् योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयम्। सप्रसादात् श्रुतवान् अहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् कथयतः परम्। व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयम्। व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयम्। एतद् etat guhyamaham param yogam yogeshvarat krishnat sakshat kathayatah svayam vyasa prasadat व्यास देव की कृपा से श्रुतवान सुना है एतत् इस गुह्यम गोपनीय अहम मैंने परम परम योगम योग को योग ईश्वरात योग के स्वामी कृष्णात कृष्ण से साक्षात साक्षात कथयतः कहते हुए स्वयं स्वयं अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। तात्पर्य, व्यास संजय के गुरु थे और संजय स्वीकार करते हैं कि व्यास की कृपा से ही वे भगवान को समझ सके। इसका अर्थ यह हुआ कि गुरु के माध्यम से ही कृष्ण को समझना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। गुरु स्वच्छ माध्यम है, यद्यपि अनुभव फिर भी प्रत्यक्ष ही होता है। गुरु परंपरा का यही रहस्य है। जब गुरु प्रामाणिक हो तो भगवत गीता का प्रत्यक्ष श्रवण किया जा सकता है, जैसा अर्जुन ने किया। संसार भर में अनेक योगी हैं, लेकिन कृष्ण योगेश्वर हैं। उन्होंने भगवत गीता में स्पष्ट उपदेश दिया है, मेरी शरण में आओ। जो ऐसा करता है वह सर्वोच्च योगी है। छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में इसकी पुष्टि हुई है, योगिनाम अपि सर्वेषाम। नारद कृष्ण के शिष्य हैं और व्यास के गुरु। अतएव व्यास अर्जुन के ही समान प्रामाणिक हैं, क्योंकि वे गुरु परंपरा में आते हैं और संजय व्यास देव के शिष्य हैं। अतएव व्यास की कृपा से संजय की इंद्रियां विमल हो सकीं और वे कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सके तथा उनकी वार्ता सुन सके। जो व्यक्ति कृष्ण का प्रत्यक्ष श्रवण करता है वह इस गुह्य ज्ञान को समझ सकता है। यदि वह गुरु परंपरा में नहीं होता तो वह कृष्ण की वार्ता नहीं सुन सकता। अतएव इसका ज्ञान सदैव अधूरा रहता है, विशेषतया जहां तक भगवद गीता समझने का प्रश्न है। भगवद गीता में योग की समस्त पद्धतियों का, कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग का वर्णन हुआ है। श्री कृष्ण इन समस्त योगों के स्वामी हैं। लेकिन यह समझ लेना चाहिए कि जिस तरह अर्जुन कृष्ण को प्रत्यक्षतः समझ सकने के लिए भाग्यशाली था, उसी प्रकार व्यास देव की कृपा से संजय भी कृष्ण को साक्षात सुनने में समर्थ हो सका। वस्तुतः कृष्ण से प्रत्यक्षतः सुनने एवं व्यास जैसे गुरु के माध्यम से प्रत्यक्ष सुनने में कोई अंतर नहीं है। गुरु भी व्यासदेव का प्रतिनिधि होता है। अतएव वैदिक पद्धति के अनुसार अपने गुरु के जन्म दिवस पर शिष्यगण व्यास पूजा नामक उत्सव रचाते हैं। अनुवाद को दोहराइए। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। ओम ज्ञान ज्ञानांजन शलाकय मेलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धोभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तामवृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गेणया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादर न परः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते पेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। कल गुरु पूर्णिमा है इसलिए भक्तों ने निवेदन किया कि गुरु पूर्णिमा के विषय में प्रवचन हो तो अच्छा रहेगा। तो आज दोपहर को और कल शाम को भी इसी विषय पर चर्चा होगी। साथ साथ इस उत्सव का महत्व क्या है अर्थात इसे क्यों मनाया जाता है किन के सम्मान में ये मनाया जाता है इसकी चर्चा आज और कल हम करेंगे। गुरु तत्व की इतनी चर्चा नहीं करेंगे परंतु जिनके सम्मान में ये उत्सव मनाया जाता है उनकी चर्चा हम करेंगे और वो हैं श्रील व्यासदेव। श्रील व्यास देव जी के सम्मान में ये उत्सव मनाया जाता है। इसलिए इस उत्सव को अर्थात गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। वैसे भगवान श्री कृष्ण ही मूल या परम गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जगत गुरु हैं श्री कृष्ण, संपूर्ण गुरु तत्व के स्रोत हैं, आदि गुरु। परंतु जिस प्रकार से प्रत्यक्ष अर्जुन के सामने श्री कृष्ण खड़े होकर भगवद गीता बोल रहे थे, वैसे हमारे सामने वो नहीं आएंगे। कम से कम हम जो साधारण भक्त हैं हमारे सामने तो नहीं आएंगे। आप में से कोई बहुत विशेष हो तो शायद आ सकते हैं, परंतु प्रभुपाद जी हमें यहाँ सांत्वना देते हैं कि संजय को उतना ही लाभ मिला जबकि उन्होंने व्यास देव से कृष्ण कथा सुनी और व्यास देव की कृपा प्राप्त की। व्यास देव उनके गुरु थे। तो श्रील प्रभुपाद जी समझाते थे कि संजय और अर्जुन दोनों की परिस्थिति में कोई अंतर नहीं है। यद्यपि अर्जुन ने प्रत्यक्ष श्री कृष्ण के मुखारविंद से भगवद गीता सुनी, फिर भी संजय भी उतने ही भाग्यशाली थे क्योंकि उन्होंने अपने गुरु व्यास देव जी के मुखारविंद से कृष्ण कथा सुनी, उनकी कृपा प्राप्त की। और इसलिए श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि जो गुरु होते हैं वो व्यास देव जी के प्रतिनिधि होते हैं, और इसलिए जो गुरु का जन्मदिन होता है वो व्यास पूजा के नाम से जाना जाता है, व्यास पूजा का दिन होता है। वैसे साधारणतः गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुजनों का सम्मान किया जाता है, परंतु गौड़ीय संप्रदाय आदि में, भक्ति संप्रदायों में, हर एक व्यक्ति अपने अपने गुरुजनों के जन्मदिन को व्यास पूजा मानते हैं। हम अलग से ऐसे गुरु पूर्णिमा नहीं मनाते हैं, परंतु क्योंकि ये एक वैदिक उत्सव है, एक बहुत महत्वपूर्ण समय है, इसलिए ये चर्चा करना भी आवश्यक है। तो गुरु व्यासदेव जी के प्रतिनिधि होते हैं। तो मूल गुरु श्री कृष्ण हैं, कृष्ण के प्रतिनिधि इस संसार में व्यासदेव जी हैं, और जितने भी गुरुजन हैं जो लोगों को वैदिक ज्ञान देते हैं वो व्यासदेव जी के प्रतिनिधि हैं, इसलिए व्यासदेव जी से अभिन्न हैं। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम या किसी अन्य वैदिक ग्रंथ के ऊपर प्रवचन दे रहा हो, तो जिस आसन पे वो बैठा हुआ होता है उस आसन को क्या कहते हैं? व्यासासन, व्यास का आसन या व्यास पीठ। ये कोई साधारण कुर्सी नहीं है। इसलिए जैसे हम यहाँ मंदिर में इतनी सारी कुर्सियां हैं और कोई भी व्यक्ति आके यहाँ बैठ सकते हैं, परंतु इस आसन को ऐसे कुर्सी समझनी नहीं चाहिए। कभी कोई कुर्सी कम पड़ गई तो यहाँ आके बैठ गए, ऐसा नहीं करना है। ये व्यासदेव जी की गद्दी है, इसलिए यहाँ बैठते समय बहुत सावधानी से बैठना होता है और बोलते समय भी बहुत सावधानी से बोलना होता है। इसकी जो गरिमा है, इसका जो सम्मान है, ये बनाए रखना है। इसलिए हमें इस तरह से बात नहीं करना है व्यास पीठ के ऊपर बैठे हुए, जैसे हो सकता है हम बाहर कहीं बात करें। वैसे भी कोई गलत बात बाहर भी नहीं करनी चाहिए, परंतु विशेष करके जब व्यासासन पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ होता है तो मर्यादा का पालन अवश्य करना चाहिए, ये जानकर कि वो व्यक्ति अभी व्यास देव जो इस संसार के भीतर आदि गुरु हैं उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। व्यास देव की ओर से व्यक्ति व्यास देव जी ने सिखलाए हुए ज्ञान को जो प्रदान कर रहे हैं वो यहाँ पर व्यास पीठ या व्यास आसन पर बैठते हैं। तो इसलिए व्यास देव जी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। व्यास शब्द का अर्थ क्या है? व्यास का अर्थ है या संपादन करना या तो फिर विभाजन करना। तो व्यास देव जी वो देव हैं जिन्होंने वेदों का विभाजन किया, वेदों का संपादन किया। ऐसे बताया जाता है शास्त्रों में कि चार युग होते हैं, हम सब जानते हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। पहले जो तीन युग होते हैं इनमें लोगों की बुद्धि अच्छी होती है, विशेष करके सत्ययुग में लोगों की बुद्धि बहुत तीव्र होती है, स्मृति शक्ति भी बहुत तीव्र होती है, इसलिए उनको ग्रंथों की, किताबों की आवश्यकता नहीं होती, लिखने पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, किसी लिपि की आवश्यकता भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि केवल एक बार कहने से, गुरु के मुख से जो शिष्य हैं वो सुन लेते थे और याद रखते थे। और ये केवल एक श्लोक, दो श्लोक, 50 श्लोकों की बात नहीं है, लाखों लाखों श्लोकों की बात कर रहे हैं हम देखते हैं कि जब वाल्मीकि मुनि ने रामायण की रचना की तो वो ढूंढ रहे थे ऐसे कोई योग्य शिष्यों को जो कि उनकी रचना को पूरी तरह से कंठस्थ कर पाए। और वाल्मीकि रामायण में कितने श्लोक हैं? 24,000। तो 24,000 श्लोकों को कंठस्थ करना, और वो भी जल्द कम समय में, एक बार उन्होंने सुना दिया, बस इन्होंने सुना और कंठस्थ कर लिया। इसलिए ये व्यक्ति, जो व्यक्ति पहले के युगों में रहते थे तो उनकी स्मृति शक्ति आदि बहुत तीव्र होने के कारण ऐसे किताबों की, ग्रंथों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। परंतु क्योंकि कलयुग में सबकी स्मृति शक्ति बहुत ही कोमल है, बहुत ही दुर्बल है, तीव्र नहीं है, हम भूल जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, हमारी बुद्धि भी इतनी तीव्र नहीं होती है, विशेष करके आध्यात्मिक विषयों को समझने की जो एक वृत्ति होती है वो नहीं है, बुद्धि भी उतनी नहीं है, तो इसलिए आजकल यहाँ इस कलयुग में लिखने की आवश्यकता पड़ी, रचना करने की आवश्यकता पड़ी। तो व्यासदेव जी ने उस वैदिक ज्ञान का संपादन किया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि पहले जितना भी ज्ञान था उसे वेद कहते थे, वेदों में कोई विभाजन नहीं था, ये ज्ञान एक ही संपूर्ण ज्ञान था। आजकल पाठशालाओं में से भी विषयों का विभाजन होता है, कोई एक भाषा सिखाते हैं, फिर कोई इतिहास है, कोई अर्थव्यवस्था है, कोई गणित है, कुछ भूगोल है, या पहले से ही अलग 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 विषय सिखाते हैं। फिर छात्रों को या छात्रियों को लगता है कि नहीं मुझे ये विषय अच्छा लगता है, वो विषय अच्छा नहीं लगता, परंतु जो आदि वेद ज्ञान था सब एक था, एक विषय था, उसके कई विभाजन अवश्य थे, परंतु पुराने काल के जो ऋषि मुनि होते थे, जो वैदिक ज्ञान के पंडित होते थे, वो सब कुछ जानते थे, चाहे वो गणित हो, चाहे वो ज्योतिष शास्त्र हो, चाहे वो खेती की बात हो, कुछ भी हो, सब कुछ जानते थे। तो वेद व्यास जी ने क्या किया, उन्होंने सारे वेद को इकट्ठा किया, जो इधर उधर अलग अलग मंत्र हैं, अलग अलग और रचनाएं हैं, उन सबको इकट्ठा किया। इसलिए संपादन व्यास, वेद व्यास। और फिर उन्होंने विभाजन भी किया, क्योंकि उन्हें पता था कि इतना एक विशाल ग्रंथ हम बनाएंगे तो कलयुग में लोग इसको पढ़ ही नहीं पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे इसको। तो उन्होंने विभाजन किया चार वेदों में। तो इसका वर्णन पुराणों में आता है, महाभारत में है और श्रीमद् भागवतम में भी है। तो ये चार कौन से हैं ये वेद? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इसके अतिरिक्त और भी कई ग्रंथ हैं जो पुराण हैं, इतिहास हैं इत्यादि। तो व्यास देव जी ने क्या किया, उन्होंने अपने कई प्रमुख शिष्यों को चुना। जैसे कि उन्होंने पैल ऋषि को चुना, और जो उन्होंने ऋग्वेद की रचना की थी वो उनके हवाले कर दी। फिर वैशंपायन ऋषि थे, उनको यजुर्वेद उनके हाथों में सौंप दिया। फिर जैमिनी ऋषि थे, उनके हाथों में सामवेद सौंप दिया। और उसके बाद में सुमंतु नाम के एक ऋषि थे जो अंगिरा के नाम से भी जाने जाते हैं, उनको अथर्ववेद सौंप दिया। ये सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में बता रहे हैं। और फिर वो कहते हैं कि मेरे पिताजी रोमहर्षण या लोमहर्षण, उनको श्रील व्यासदेव जी ने इतिहास और पुराण सौंप दिए। सौंप दिए का अर्थ है कि उन्होंने इनको ये सिखलाया विशेष रूप से। और फिर उन्होंने कंठस्थ भी कर लिया और इसकी रचना करके फिर ये अब अभी तक लिखित रूप में नहीं आया, फिर भी वो परंपरा चलती आई। फिर ऋग्वेद की परंपरा बनी, सामवेद की परंपरा बनी, इस प्रकार से चारों वेदों की परंपराएं शुरू हो गईं। और रोमहर्षण ऋषि ने फिर अपनी परंपरा शुरू की, और इन परंपराओं के अनेक शाखाएं हुई, उपशाखाएं हुई, और ऐसे चलते चलते इन सैकड़ों सैकड़ों वर्षों में, शतकों में कितने सारे शाखाएं, ऐसे संप्रदाय आदि, पंथ आदि सब उत्पन्न हुए। तो वैदिक ज्ञान इस प्रकार से फैला संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर। तो व्यास देव जी को हम गुरु क्यों मानते हैं, आदि गुरु क्यों मानते हैं, और ये गुरु पूर्णिमा का महोत्सव उनके सम्मान में विशेष रूप से क्यों मनाया जाता है? क्योंकि गुरु कौन होता है? गुरु वो होता है जो हमें ज्ञान देता है। परंतु किस प्रकार का ज्ञान? केवल साधारण ज्ञान जब कोई व्यक्ति देता है तो हम ठीक है, दुनिया में साधारण बोली में उसे भी गुरु मानते हैं। कोई जैसे किसी को खेल सिखा देता है, कई बार कोई जुआ सिखा देता है ना, वो तो ये मेरा भी गुरु है, जुए का गुरु है ये। जैसे कोई चोरी है, चोरी चोरों की संप्रदाय भी होती है ना, चोरों के समाज में भी जो नया लड़का है, नई लड़की होती है, उनको पकड़ते हैं, उनको सिखाते हैं, कोई उस्ताद होता है, गुरु होते हैं, उनको सिखाते हैं, देखो कैसे जेब कतार बनना चाहिए, कैसे चोरी करनी चाहिए। तो ये भी तो ज्ञान है ना एक प्रकार का, ये भी एक प्रकार की कला है। तो साधारण शब्दों में भरे वो चोर का, ये तो मेरे गुरु हैं, परंतु ऐसे गुरु को हम नहीं मानते। तो गुरु शब्द का वास्तविक तात्पर्य है जो अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर सके। जो बहुत भारी हैं, गुरु और लघु, इन दो शब्दों को आपने सुना होगा। तो गुरु अर्थात जो भारी होते हैं। भारी का अर्थ ये नहीं है कि उनका शरीर भारी है, वो बहुत मोटे हैं, वजन ज्यादा है, ये मतलब नहीं है। भारी अर्थात जो ज्ञान से भारी है। किस प्रकार के ज्ञान से? वैदिक ज्ञान से, दिव्य ज्ञान से भारी है। इसलिए जब गुरुजन गुरु की बात करते हैं तो गुरु वो व्यक्ति है जो वैदिक ज्ञान देने में सक्षम है। शाब्दे परिच निष्णातम ब्रह्मण्युपशमाश्रयम, जैसे कि श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में बतलाया गया है कि नव योगेंद्र बतलाते हैं कि गुरु कौन होते हैं, सबसे पहले शिष्य कौन होता है। तस्मात् गुरुम प्रपद्यते जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। तो जो व्यक्ति बहुत जिज्ञासु होता है किस बारे में, जो श्रेय उत्तमम, जो हमारा वास्तविक हित है, दीर्घकालीन आध्यात्मिक हित है हमारा, उसके बारे में जो बहुत जिज्ञासु होता है वो व्यक्ति वास्तव में शिष्य है। केवल यूं ही आना और फिर बस थोड़े समय के लिए रहना फिर कुछ और करना, ये शिष्य नहीं है। आदर्श शिष्य जो होता है वो अति जिज्ञासु होता है, वो और जानना चाहता है, और सीखना चाहता है, और आगे भक्ति मार्ग में आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है। इसलिए तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, इसलिए चाहिए कि हर एक व्यक्ति को ऐसे जिज्ञासु बन के गुरु के शरण में जाना चाहिए। और गुरु कैसे होने चाहिए, शाब्दे, शाब्दे अर्थात शब्द में। वैदिक शास्त्रों को और वैदिक ज्ञान को शब्द भी कहा जाता है, क्योंकि ये शब्द किस प्रकार का शब्द है, ये दिव्य ध्वनि है। शास्त्रों के जो वाणी है वो दिव्य ध्वनि होने के कारण उसे शब्द कहते हैं। शब्द प्रमाण, ये प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, ये शब्द प्रमाण है। तो शब्द में पूरी तरह से निष्ठा होना, शब्द से अवगत होना पूरी तरह से, शाब्दे च परे, परे अर्थात भगवान में। तो गुरु वो हैं जिनको शास्त्रों में अर्थात वैदिक ज्ञान में और भगवान में पूरी श्रद्धा है, उनको पूरा ज्ञान है, समझ है शास्त्रों का, और अन्यों को शास्त्रों की बातें समझा सकते हैं, समझाने की क्षमता उनमें है, और साथ साथ ब्रह्मणि उपशमाश्रयम, जिन्होंने पूरी तरह से इन दोनों के प्रति आश्रय स्वीकार कर लिया है, जो शरणागत हैं इनके प्रति। तो इसलिए गुरु वो होते हैं जो वैदिक ज्ञान देते हैं। वैसे वेदों के मूल स्रोत तो भगवान स्वयं हैं, भगवान नारायण के श्वास से ये वेद उत्पन्न होते हैं। वैसे तो वेद आदि भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी से उत्पन्न होते हैं, ब्रह्म संहिता में जैसे ब्रह्मा जी बताते हैं। तो यहां भौतिक जगत में ब्रह्मा जी के मुख से ये वेद निकलते हैं, परंतु ब्रह्मा जी तो ब्रह्म लोक में रहते हैं ना, एक आध बार कभी आते हैं पृथ्वी लोक के ऊपर, और वो भी ब्रह्म कलयुग में तो आते ही नहीं है। तो इसलिए पृथ्वी लोक पे ऐसे कोई व्यक्ति चाहिए जो कि मूर्तिमान वैदिक ज्ञान के स्वरूप हो, वो है वेदव्यास या व्यासदेव। और इसलिए व्यासदेव जी को वो शक्ति प्रदान की जाती है जिसके द्वारा वो वेदों का संपादन कर सकते हैं। ये कोई साधारण काम नहीं है। देखिए महाभारत जैसे ग्रंथ लिखना, ये चार वेदों की रचना करना, पुराणों की आदि उपनिषदों की रचना करना, ये कोई साधारण मनुष्य की बात नहीं है या असाधारण मनुष्य की बात भी नहीं है। इसलिए व्यासदेव जी जो हैं ये भगवान के अवतार माने जाते हैं। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंध के तीसरे अध्याय में सूत गोस्वामी 22 प्रमुख या प्रसिद्ध अवतारों का उल्लेख करते हैं। उनमें से सातवें या सत्रहवें अवतार हैं व्यासदेव। तो इस प्रकार से व्यासदेव चूंकि पृथ्वी पे हैं, वो मूर्तिमान वैदिक ज्ञान है, इसलिए हम उनको गुरु मानते हैं, क्योंकि गुरु वो होते हैं जो वैदिक ज्ञान देते हैं। इसलिए व्यासदेव जी ने फिर ऐसी परंपराएं शुरू कर दी वैदिक ज्ञान का प्रचार प्रसार के लिए। वैसे आपको एक आश्चर्य की बात बताऊं कि ये पहले व्यास नहीं है, हर एक चतुर्युग में एक व्यास होते हैं। चतुर्युग अर्थात क्या, सत्य त्रेता द्वापर कली। तो हर एक द्वापर युग के अंत में एक न कोई एक व्यासदेव आते हैं, ऐसे विष्णु पुराण में बताया गया है। तो ब्रह्मा जी के एक दिवस में 7 मनु होते हैं और मनु की जो जीवन की अवधि होती है वो उसे मन्वंतर कहते हैं। हर एक मन्वंतर में 14, हर एक ब्रह्मा जी के दिन में 14 मनु होते हैं और हर एक मनु के मन्वंतर में 71 चतुर्युग होते हैं। तो अभी हमारे जो मनु है वैवस्वत मनु, उनके मन्वंतर में 2800 ये चतुर्युग चल रहा है। तो इस मन्वंतर में हमारे जो व्यास देव जी हैं वो 28वें व्यास देव हैं। हर एक द्वापर में एक व्यास देव होते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि पहले 3 युगों में, जैसे मैंने पहले कहा था, लोगों की क्षमता इतनी होती है, इतनी बौद्धिक शक्ति क्षमता होती है कि वो केवल वैदिक ज्ञान को सुनकर याद कर सकें, परंतु कलयुग में ऐसे नहीं होता है। इसलिए कलयुग में वेदों का विभाजन करना, संपादन करना और आगे चल के इनको लिखित रूप में करना ये आवश्यक होता है। इसलिए और ज्यादा लोगों की स्मृति शक्ति कमजोर होती जाती है, क्योंकि हर चीज के लिए अभी हम किसी लिखित चीज को देखना पसंद करते हैं। पहले जब पुराने जमाने में वो गोल गोल घुमाने वाले फोन हुआ करते थे, अनेक फोन नंबर याद रहते थे। आजकल याद रखने की आवश्यकता ही नहीं है, बटन दबा लो, बस उनको फोन कर लो, कुछ याद रखने की आवश्यकता। इसलिए स्मृति शक्ति और भी कमजोर हो रही है। देखिए, जब कोई शरीर के अंग का आप कसरत नहीं करोगे ना, तो वो कमजोर हो जाएगा अंग। ठीक उसी प्रकार से जो याददाश्त है ना, वो भी कमजोर होती जा रही है, क्योंकि हम उसका कोई उस कसरत नहीं करते, कोई अभ्यास नहीं करते। इसलिए बीच बीच में चीजों को याद करने का प्रयास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, परंतु कौन सी चीजें? वैदिक ज्ञान से संबंधित। तो खैर, ये 28वें व्यास देव जी हैं। सबसे पहले व्यास इस मन्वंतर में कौन बने? स्वयं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के बाद आए प्रजापति, फिर शुक्राचार्य, बृहस्पति, ये अलग अलग मन्वंतरों, ये अलग अलग चतुर्युगों में व्यास देव बने। और बहुत सारे बने व्यास देव, धर्मराज बने, सूर्य देव बने, इंद्र बने, वशिष्ठ मुनि बने, और अब 28वें जो व्यास देव हैं वो हमारे व्यास देव हैं। और इसके बाद में जब 71वें व्यास देव आएंगे और ये मन्वंतर समाप्त हो जाएगा, तो फिर अगला मन्वंतर शुरू होगा। परंतु इस 28वें चतुर्युग के बाद जब 29वां मन्वंतर चतुर्युग आएगा, तो उस चतुर्युग के द्वापर के अंत में व्यास देव जी कौन बनेंगे? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा चिरंजीवियों में से एक है ना, तो वो रहेंगे इस चतुर्युग के अंत में भी, वो रहेंगे, उनकी मृत्यु नहीं होगी, बहुत लंबी आयु उनकी है। तो अश्वत्थामा 29वें व्यास देव जी बनेंगे। इस प्रकार से ये हमारे व्यास देव हैं। तो भगवान को ऐसे वेद पुराण आदि की रचना करने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि विशेष करके कलयुग में लोगों की क्षमता नहीं होती है आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए अपनी इच्छा से। इसलिए चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कहते हैं, माया मुग्ध जीवर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवर कृपा कैल कृष्ण वेद पुराण। वो कहते हैं कि माया मुग्ध जीवेर, वो जीव जो बद्ध है, जो माया से मुग्ध हो चुका है, भ्रमित हो चुका है, उसके अंदर वो क्षमता नहीं रहती कि वो स्वतः स्वयं कृष्ण भावना भावित बन जाए। इसलिए ऐसे जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए श्री कृष्ण ने वेद पुराण आदि इनकी रचना की। कृष्ण ने किस रूप में इन शास्त्रों की रचना की? व्यास देव जी के रूप में। इसलिए व्यास देव जी हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण हैं और हम उनको उनका स्मरण करते हैं, उनका सम्मान करते हैं इस गुरु पूर्णिमा के दिन पर। तो ये इनका नाम, ये व्यास जो है ये एक पदवी है, जैसे प्रधानमंत्री। देश में बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए हैं ना, तो हम कहते हैं प्रधानमंत्री ने ऐसे कहा, परंतु कौन से प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री का भी कोई नाम है। राष्ट्रपति भी बहुत हुए हैं, ये भी एक पद है। उसी प्रकार से व्यास ये भी एक पद है, एक पदवी है। तो जो व्यक्ति इस पद में है अभी इस समय, उनका नाम है कृष्ण द्वैपायन। तो हमारे व्यास देव जी का नाम है, पूर्ण नाम है कृष्ण द्वैपायन व्यास। जैसे पदवी, पूरा नाम बताओ। बांदीवाड़ेकर, तो प्रथमेश बांदीवाड़ेकर। तो बांदीवाड़ेकर तो बहुत है, ये प्रथमेश बांदीवाड़ेकर है। ये पद है बांदीवाड़ेकर की, परिवार का नाम है, परंतु विशेष कौन है उस परिवार में वो नाम भी दिया हुआ है। उसी प्रकार से व्यास है, वो पद है, पर उनको नाम क्या है? कृष्ण द्वैपायन। तो व्यास शब्द का अर्थ तो हमने सुन लिया, तो कृष्ण और द्वैपायन शब्द का अर्थ क्या है? कृष्ण अर्थात जो सांवले हैं, क्योंकि उनके शरीर की कांति भी सांवले रंग की थी व्यास देव जी की, हमारे व्यास देव जी की, इसलिए उनका नाम हुआ कृष्ण। और उनका जन्म एक द्वीप के ऊपर हुआ, इसलिए उनका नाम है द्वैपायन। उनके पिता हैं पराशर मुनि, उनकी माता हैं सत्यवती। पराशर मुनि जब एक बार नदी पार कर रहे थे एक नौके में, फिर उन्होंने जो महिला जो नौका चला रही थी जिसका नाम था मत्स्यगंधा, आगे चल के सत्यवती के नाम से भी जानी जाती हैं, उनके द्वारा व्यास देव की उत्पत्ति की। और वो एक मछुआरे की कन्या थी, तो उन्होंने वरदान दिया कि जो पुत्र तुम्हारा होगा वो वैदिक ज्ञान में परांगत होगा, बहुत ही विद्वान होगा, वो वेदों की रचना करेगा, बहुत बड़ा तपस्वी रहेगा, बहुत बड़ा संत बन जाएगा, तुम चिंता नहीं करो और तुम कुमारी बनी रहोगी। ऐसे पराशर मुनि ने वरदान दिया और फिर व्यास देव जी का जन्म हुआ। और उस समय अपनी योग शक्ति का प्रयोग करके उन्होंने एक धुंध या कोहरा निर्माण कर दिया और वहां एक द्वीप भी निर्माण किया। पद्म पुराण में कहा जाता है कि ये द्वीप पराशर मुनि ने यमुना नदी के बीच में कहीं एक जगह बनाई। व्यास देव जी के जन्म के संबंध में भिन्न मत हैं, परंतु पद्म पुराण में ये तो इतना बताया गया है कि यमुना नदी के बीच में एक द्वीप में व्यास देव जी का गर्भाधान हुआ। और कब हुआ? वैसे कई लोग कहते हैं कि आज के दिन व्यास देव का जन्म हुआ, इसलिए ये गुरु पूर्णिमा हम मानते हैं या व्यास पूर्णिमा मानते हैं। परंतु साधारणतः जितने बड़े विद्वान हैं उनका मानना ये है कि आज के दिन उनका जन्म नहीं हुआ, उनका जन्म वैशाख शुक्ल द्वादशी में हुआ, जिसको वसंत द्वादशी कहते हैं। उसमें व्यास देव जी का, हमारे कृष्ण द्वैपायन व्यास का जन्म हुआ। फिर आगे चल के उन्होंने वेदों की रचना करना शुरू कर दिया। तो वेदों की रचना हमने बताई, चार वेद कर दिए, चार अपने शिष्यों को उन्होंने ज्ञान आदि दे दिया, परंपराएं शुरू हो गई। फिर महाभारत की रचना उन्होंने करना शुरू कर दिया। और महाभारत की रचना कैसे हुई, कैसे लिखित रूप में आ गया, वो कथा तो आप सब बचपन से ही सुनते आए हैं। जब उन्होंने सोचा कि मैं अब कहूंगा, मैं बोलते जाऊंगा, परंतु इसे लिखेगा कौन, तो ब्रह्मा जी के पास गए व्यास देव जी। ब्रह्मा जी ने कहा गणेश जी हैं जो योग्य व्यक्ति हैं जो ऐसा कर सकते हैं। तो फिर गणेश जी के पास गए व्यास देव जी। गणेश जी वहां पर आए, उन्होंने कहा अवश्य शिरोधारी, आपकी सेवा करने का अवसर मुझे मिला है तो मैं अवश्य करूंगा, महाभारत को मैं लिखूंगा, आप जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे मैं लिखता जाऊंगा, परंतु मेरा एक शर्त है। शर्त यह है कि आपको आप बोलना बंद नहीं करेंगे, आपको निरंतर बोलना होगा बिना रुकावट के, आप रुक जाएंगे फिर आगे मैं नहीं लिखूंगा। तो व्यासदेव जी ने सोचा कि अच्छा ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसे ग्रंथों की रचना करनी होती है, व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान हो बीच बीच में सोचने के लिए रुकना पड़ता है ना, ऐसे नहीं कि बस बोले जाएं बिना रुकावट के। तो व्यासदेव जी ने सोचा कि अब क्या किया जाए, रुकना तो पड़ेगा कभी कभी बीच में सोचने के लिए। तो फिर व्यासदेव जी ने कहा गणेश जी से कि ठीक है, आपका शर्त कबूल है, स्वीकार है, परंतु मेरा भी एक शर्त है, और वो शर्त क्या है कि जब मैं कुछ कहूंगा, कोई श्लोक बोलूंगा, आप तब तक लिखोगे नहीं उस श्लोक को जब तक कि आप उस श्लोक को पूरी तरह से समझ नहीं पाए। तो बीच बीच में व्यासदेव जी ऐसे कोई श्लोक बोल देते थे तो गणेश जी भी थोड़े सोच में पड़ जाते थे कि ये क्या है, फिर व्यासदेव जी को थोड़ा समय मिलता था और आगे सोचने के लिए, फिर और आगे बात को बढ़ाते थे। तो प्रभुपाद जी इस प्रकार से भागवतम के तात्पर्य में बताते हैं कि गणेश जी और व्यासदेव जी के सहयोग से ये महाभारत ग्रंथ की रचना हुई, क्योंकि व्यासदेव जी ने सोचा कि ये मैंने वेद उपनिषद आदि तो लिखे हैं, परंतु कलयुग में लोग इतने मंद बुद्धि के होंगे कि उनको इतना सब दर्शन फिलॉसफी ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए उनके लिए और भी साधारण भाषा में सब कुछ लिखना होगा और बहुत कहानियां ये वो सब सुना के हमें बताना होगा। तो जो योग्य नहीं है वैदिक ज्ञान को या दर्शन को समझने के लिए, उनके लिए बहुत सरल रूप में मुझे कुछ ज्ञान देना होगा। फिर उन्होंने श्रीमद् या महाभारत की रचना की। अब आगे चल के ठीक है, ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना हो गई, उपनिषद हो गए, पुराण हो गए, चार वेद तो हो ही गए, ब्राह्मण जो ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं, ये सारे ग्रंथ तो हो गए। फिर भी अब सूत गोस्वामी जो नैमिषारण्य में इकट्ठे हुए भक्त हैं उनसे मिलकर कहते हैं कि व्यासदेव जी ने देखा जब वो अपने आश्रम पे बैठे हुए थे तो उन्होंने सोचा, अरे मेरी दिव्य दृष्टि से मुझे दिखाई पड़ रहा है कि आने वाले कलयुग में बहुत विसंगतियां होने वाली हैं, असंगतियां, और बहुत ही उतार चढ़ाव गलत चीजें होने वाली हैं या बहुत गड़बड़ होने वाला है, इसलिए मुझे ये सब रचना करनी चाहिए, ऐसे किसी ग्रंथ की रचना करनी चाहिए जिसमें ये सारे लोगों को ये ज्ञान अच्छी तरह से मिल सके। परंतु इतना सब करने के बाद भी वो थोड़े असंतुष्ट रहे, तो वो सोचने लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, इतने सारे ग्रंथों की रचना तो मैंने कर ली, फिर भी मेरा हृदय शांत क्यों नहीं है, संतुष्ट क्यों नहीं है, क्या इसका कारण ये हो सकता है कि इतने सारे ग्रंथों को लिखने के बाद भी इन ग्रंथों में मैंने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के ऊपर इतना जोर नहीं दिया, श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार में वर्णन नहीं किया, कृष्ण भक्ति के बारे में मैंने बहुत विस्तार में कुछ कहा नहीं, और क्योंकि कृष्ण भक्ति के बिना तो हृदय संतुष्ट या शांत तो हो ही नहीं सकता, चाहे हम वैराग्य का पथ अपनाएं, ज्ञान का पथ अपनाएं, कर्म योग का पथ अपनाएं। तो जब ऐसे ही गहरी सोच में वो पड़े हुए थे तो उस समय वहां पर नारद मुनि प्रकट हुए। नारद मुनि ने तो ब्रह्मा जी से दीक्षा ली है, ब्रह्मा जी के पुत्र उनके शिष्य हैं, वो तो साक्षात भगवान का दर्शन समय समय पर करते रहते हैं, सीधे वैकुंठ में प्रवेश कर लेते हैं, भगवान के पास जाते हैं, ऐसे महान भक्त हैं नारद मुनि। तो नारद मुनि को पता चला, क्योंकि व्यास जी उनके शिष्य थे, कि वो आए देखने के लिए कि व्यासदेव जी की क्या दशा है। तो आए व्यासदेव जी के सामने कि अरे मुनिवर, ऐसे प्रतीत होता है कि आप संतुष्ट नहीं है, ऐसा क्यों है? बस इतने विद्वान हो आप, इतने तपस्वी आप हो, इतने सारे ग्रंथों की रचना आपने की है, फिर भी आपका हृदय संतुष्ट क्यों नहीं है? आपके चेहरे से ऐसे दिखाई पड़ता है कि कुछ कोई बात है जिससे कि आप असंतुष्ट हैं। फिर नारद मुनि जो है वो सबसे अच्छे वैद्य हैं। वैद्य अर्थात केवल शरीर के वैद्य नहीं, जो सबसे श्रेष्ठ वैद्य वो होते हैं जो सबसे मूल बीमारी को दूर कर सकते हैं और मूल बीमारी का कारण भी जान सकते हैं। एक बार जब प्रभुपाद जी अमेरिका में थे तो भारत से एक जादूगर वहां पर आए थे, पीसी सरकार, बहुत प्रसिद्ध जादूगर थे। तो उन्होंने वहां नव वृंदावन में, जहां प्रभुपाद जी ने एक आश्रम और मंदिर की स्थापना की थी, अपने जादू की कला दिखाई। वहां पे सबका मनोरंजन हुआ, प्रभुपाद जी भी बहुत हंसे। और फिर प्रभुपाद जी ने कहा, ठीक है, बहुत अच्छे जादू आपने दिखा लिए, परंतु एक और जादू है, आपने बहुत चीज़ें गायब कर दी। यहाँ कुछ खरगोश था, खरगोश को गायब कर दिया, यहाँ कुछ और रखा, इसको गायब कर दिया। ऐसे बताया जाता है कि आपने ताजमहल को ही गायब कर दिया था। तो ये बताइए, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, इसको गायब कर सकते हैं क्या? तो फिर वो जादूगर ने कहा, मैं उस तरह का जादूगर नहीं हूं, वो जादूगर तो आप हैं केवल, क्योंकि आप ही इनको गायब कर सकते हैं और लोगों को सच्चा आनंद और जीवन की सफलता प्रदान कर सकते हैं। तो नारद मुनि तो पहले से ही जानते थे, वो तो सर्वज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ हैं, वो जानते थे कि व्यास देव जी के मन में क्या बीत रहा है। तो वहां पर प्रकट हुए, स्मित हास्य करते हुए, क्यों मुनिवर, क्या बात है, क्या हुआ? तो उन्होंने स्वयं सबसे पहले बीमारी को खोज निकाली। वैसे बीमारी तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो बड़े संत मुनि हैं, परंतु जो असंतुष्टि का मूल था उसको वो ठीक से कह पाए। देखिए, जब हम किसी वैद्य के पास जाते हैं ना, सबसे पहले दवाई देने के पहले वैद्य को क्या करना होता है? जांच करनी होती है, ये जानना होता है कि रोग है क्या, कौन सा रोग है, तब जाकर ना वो कोई सही औषध या दवाई दे पाएंगे। तो नारद मुनि ने सही दोष ढूंढ लिया कि हे मुनिवर, यद्यपि आपने इतने सारे ग्रंथों की रचना की, फिर भी आपने भगवान हरि, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन पर्याप्त मात्रा में नहीं किया। आपने यहां वहां जहां तहां आपने किया, पुराणों में कहीं इधर कहीं उधर, परंतु ऐसे किसी ग्रंथ की रचना आपने नहीं की है जिसमें केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण का गुणगान किया गया हो, और इसलिए आप अभी तक असंतुष्ट हैं, इतनी तपस्या करने के बाद, इतने सारे ग्रंथों की रचना करने के बाद। तो इसलिए आप श्रीमद् भागवतम की रचना कीजिए। तो फिर नारद मुनि ने आशीर्वाद दिया ऐसे, और फिर व्यास देव जी बैठे और उन्होंने अपने ध्यान में सब कुछ देखा, श्रीमद् भागवतम की रचना उन्होंने की। तो व्यास देव जी ये स्वयं भगवान के अवतार हैं, भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए भगवद गीता में मुनि नाम अप्यहम व्यास है, ऐसे श्री कृष्ण दसवें स्कंद में कहते हैं, मुनियों में से मैं व्यास हूं। तो जब भागवतम की रचना की, इसलिए हम लोग जब भागवत पढ़ते हैं तो ये जानते हैं कि न केवल श्रीमद् भागवतम भगवान का अवतार है साहित्य रूप में, परंतु भागवतम की रचना करने वाले जो साधु हैं, जो व्यास देव जी हैं, वो भी भगवान के अवतार हैं। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यम स्वस्त्ययनम महत। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि ये जो भागवतम नाम का शास्त्र है, इदम भागवतम नाम पुराणम, ये भागवत पुराण नाम का जो शास्त्र है, ब्रह्म संहितम, ये साक्षात भगवान है। तो ये श्रीमद् भागवतम हो, श्रीमद् भगवद गीता हो, ये भी भगवान के अवतार माने जाते हैं शब्द रूप में, साहित्य रूप में। तो इनको अवतार से कम नहीं मानना चाहिए, इसलिए बहुत ही अच्छे ढंग से इन ग्रंथ को रखना चाहिए। यहाँ वहाँ जैसे वैसे नहीं रखना चाहिए, किसी गंदे स्थानों में नहीं रखना चाहिए, पूरे सम्मान से रखना चाहिए इन ग्रंथों को। तो पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम, इन ग्रंथों में ये भगवान से अभिन्न क्यों है श्रीमद् भागवतम? क्योंकि इस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण, जिनका और एक नाम है उत्तम श्लोक, उनके चरित्र का वर्णन पाया जाता है। और इस ग्रंथ की रचना किसने की? चकार रचना कर किसने की? भगवान ऋषि ही। कौन ऋषि हैं? ये व्यास देव और ये भगवान भी हैं। निःश्रेयसाय लोकस्य, समस्त लोगों के लिए ये परम श्रेयस का कार्य है। धन्यम स्वस्त्ययनम महत, परिपूर्णता का एक मार्ग है ये, संपूर्ण ऐश्वर्य सौंदर्य सुख से भरा हुआ ये ग्रंथ है। तो इसलिए ये जो जिस ग्रंथ की रचना अंततः व्यासदेव जी ने की, यह है श्रीमद् भागवतम, और ये हमारे लिए भी एक गुरु समान है। सर्व वेद इतिहासानाम सारम सारम समुद्रताम, सूत गोस्वामी कहते हैं सारे जो जितने भी वेद हैं, इतिहास हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, इनके सार का सार है ये। तो व्यास देव जी की ये सबसे महत्वपूर्ण रचना है, जो संपूर्ण शास्त्रों को, वैदिक शास्त्रों के ज्ञान का निचोड़ है श्रीमद् भागवतम। इसलिए जो सबसे श्रेष्ठ गुरु हैं वो हैं जो हमें श्रीमद् भागवतम का ज्ञान देते हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने यही सिखलाया है कि हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ पुराण है। तो व्यास देव जी का को जब हम गुरु मानते हैं, इसके लिए इतने सारे कारण हैं। तो सूत गोस्वामी ने फिर कहा कि मैंने ये श्रीमद् भागवतम सुना सुखदेव गोस्वामी से, और सुखदेव गोस्वामी ने, और वही श्रीमद् भागवतम हे मुनिवर मुनिगणों मैं आपको सुना रहा हूँ नैमिषारण्य में। उधर सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को सुनाई। तो इस प्रकार से फिर परंपराएं श्रीमद् भागवतम की चलती रहीं, और आज हम सब इतने सौभाग्यशाली हैं कि श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से यही सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ, जो सर्वोपरि ग्रंथ है, संपूर्ण शास्त्रों का निचोड़ है, सारम सारम समुद्रताम, वो हमारे लिए आज उपलब्ध है। हम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, और ये केवल व्यास देव जी की कृपा है, और आधुनिक काल में श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है। तो श्रील प्रभुपाद जी और जितने भी अन्य गुरुजन हुए हैं इतिहास में, वो सब श्री व्यास देव जी का ही कार्य आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए श्री प्रभुपाद जी की गुरु पूजा होती है, उनकी व्यास पूजा होती है। तो चाहे कोई शिक्षा गुरु हो, दीक्षा गुरु हो, वो सारे के सारे व्यास देव जी के प्रतिनिधि माने जाते हैं। तो गुरु पूर्णिमा के इस दिन हमें व्यासदेव के चरण कमलों में प्रार्थना करनी चाहिए, हमारे गुरुजनों के चरण कमलों में प्रार्थना करनी चाहिए। इतने सारे गुरुजन हमारे हुए हैं, हमारे स्वयं के भी जो दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, और आगे कितने इतिहास में हुए हैं, सबका सम्मान करते हुए हमें गुरु पूर्णिमा का महोत्सव मनाना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। कोई प्रश्न है, टीका टिप्पणी?
हरे कृष्ण महाराज।
हरे कृष्ण।
Why was this particular day chosen? Is there any history behind it? Why was this particular day chosen as Guru Purnima, which is tomorrow's day? Is there any history behind it?
प्रश्न ये है कि इसी दिन को क्यों गुरु पूर्णिमा के रूप में चुना गया था? अभी चातुर्मास का प्रारंभ भी हो रहा है ना, कल से। वैसे हम लोग पूर्णिमांत पद्धति को मानते हैं, कई लोग एकादशी से मानते हैं, आषाढ़ एकादशी से उनका चातुर्मास शुरू हो जाता है। हमारा चातुर्मास आज से शुरू हो गया है अभी, तो ये एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि कई लोग मानते हैं कि ये इनका जन्मदिन है, जो भी है, लेकिन ये दिन अब तय हो गया है कि ये गुरु पूर्णिमा है, जिस दिन हम व्यास देव जी का सम्मान करते हैं। और हमारे लिए एक और महत्वपूर्ण बात है कि सनातन गोस्वामी पाद का दिन है ये, लेकिन थोड़ा बहुत वो कल शाम को हो सके तो चर्चा करेंगे, ठीक है?
हरे कृष्ण। भी आपने प्रवचन में बोला कि सत्ययुग में कैसे लोग थे, एक बार बोले तो सुन जाते थे, उसके बाद कलयुग का भी ये किया कि आप कलयुग के लोग मंद होते हैं और याद नहीं रहता, बार बार ये जाते, फिर भी हम सत्संग में या मंदिर में बोलते हैं श्लोक पठन करो, ये करो, तो ये कलयुग का लक्षण है, फिर भी कैसे हम याद कर लेंगे?
हमारी स्मृति शक्ति, बुद्धि सत्ययुग त्रेतायुग आदि की तुलना में कमजोर है। इसका अर्थ ये नहीं है कि इनका उपयोग हमें नहीं करना चाहिए, जितना है उतना उपयोग करना चाहिए, और जितना उपयोग करेंगे वो इतने प्रबल बन जाएंगे, उपयोग नहीं करेंगे तो और भी दुर्बल बन जाएंगे, और सही चीज के लिए इनका उपयोग करना चाहिए, ठीक है? अच्छा, और एक मुझे सूचना करनी थी। आप सब जानते हैं कि हमारा एक प्रकल्प है गोकुल धाम। गोकुल धाम का नाम आपने, कितने भक्तों ने सुना है? सबने सुना है। तो एक ऐसे खेती आदि, गोरक्षा खेती आदि का प्रकल्प है, यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर दूर गोवा की ओर, जाम्बोटी से आगे। तो वहाँ पर ये खेती का प्रकल्प कई वर्षों से चल रहा है, फिर गौशाला भी है और गुरुकुल भी हम प्रारंभ कर रहे हैं लगभग उसी इलाके में। तो आगे चल के इन प्रकल्पों, और जो और एक प्रकल्प वहाँ पे चल रहा है वो है कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए कैसे गांव में रहने वाले जितने भी लोग हैं एक संपूर्ण स्वास्थ्य की कल्पना हो जाए, ताकि न केवल शरीर के लिए, आत्मा के लिए, मन के लिए इत्यादि। तो ये सारे प्रकल्प वहाँ किए जा रहे हैं। तो हम ऐसे भी कोई योजनाएं बनाना चाहते हैं जिनके द्वारा थोड़ी आर्थिक सहायता इन प्रकल्पों को मिल जाए, ताकि आने वाले सालों में वो अच्छी तरह से चल सकें। तो ऐसे कृषि और गोरक्षा पर आधारित ऐसे कई ग्राम उद्योग, कुटीर उद्योग छोटे पैमाने पर हम लोग कर रहे हैं वहाँ के गांवों को साथ में लेकर। तो ये पहला उद्देश्य है कि यहाँ इन प्रकल्पों के लिए कोई आर्थिक सहायता मिल जाए। दूसरा उद्देश्य है कि गांव में जो रहने वाले लोग हैं, हमारे भक्त और जो अन्य भी हैं जो शायद हमारे भक्त न भी हों, वो सब गांव छोड़ के अभी शहर में जा रहे हैं और गांव का जीवन छोड़ रहे हैं, तो हम उनको एक सात्विक जीविका का साधन भी प्रदान करना चाहते हैं, जिसके द्वारा वो राजसिक तामसिक कार्यों को छोड़कर सात्विक कार्यों को स्वीकार करके गोकुल धाम और कृष्ण भक्ति से भी जुड़ जाएं। तो गांव सारे आसपास के गांव में और गोकुल धाम में भी जो लोग रहते हैं और आसपास के गांव में रहते हैं उनके लिए भी एक आमदनी उत्पन्न हो जाए, ऐसी आमदनी जिससे वो कृष्ण भक्ति से भी जुड़ सकें। और फिर जो लोग थोड़ी कुटीर उद्योग के उत्पादन को खरीदेंगे, देखेंगे जगह जगह बेलगाम में भी और बाहर भी, उनको भी पता चलेगा कि सरल जीवन, ऊंचे विचार कितना महत्वपूर्ण है, कृषि गोरक्षा कितना महत्वपूर्ण है, तो वो भी धीरे धीरे से सरल जीवन, ऊंचा विचार, ऐसा जीवन वो स्वीकार करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। तो ये सारे उद्देश्य हैं। इसलिए हम अनेक ऐसे उत्पादन चीजों का उत्पादन करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो उत्पादन है वो अभी आपको हम दिखा रहे हैं, एक धूप है जो हमने बनाया है। तो ये पैकेट है, तो आज से इसका शुरुआत हम कर रहे हैं। और ये अगरबत्ती से श्रेष्ठ है। जो अगरबत्ती है जो बाजार में मिलता है उस वो रासायनिक पदार्थों से बना हुआ होता है, जो कि जब वो जलता है तो हमारे उसका धुआं जो है वो रासायनिक पदार्थों का होने के कारण हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। और साथ साथ में अगरबत्ती के अंदर वो बांस होता है, तो बांस भी जलता है, तो उसके जलने से भी थोड़ा प्रदूषण आदि हो जाता है। तो और कई कमियां हैं उसकी, परंतु ये शुद्ध गोबर और जो प्राकृतिक ऐसे औषधियां हैं उनसे बनाया हुआ है। तो जो भी उत्पादन होंगे उनका नाम होगा व्रज गोकुलम। व्रज गोकुलम नाम दिया है। तो व्रज गोकुलम, चाहे धूप हो और भी ऐसे कई चीजें आएंगी, धूप से शुरुआत हुई है, आगे चल के शहद या मद आएगा और भी बहुत सारी चीजें। गोकुल धाम में रहने वाले भक्त और आसपास के गांव में रहने वाले भक्त भी इसका उत्पादन करेंगे। तो इसको भी जरा खोल देना, खोलना है ना इसको। तो इसके अंदर 12 ऐसे पैकेट हैं, बक्से हैं। तो ऐसे ये धूप है, तो बहुत अच्छा है, प्राकृतिक है, कभी हमने सेल्समैन गिरी नहीं की है, अभी पहली बार कर रहे हैं। ये ऐसा धूप, हम लोग यहाँ भी ऐसा धूप ही प्रयोग करते, भी अगरबत्ती नहीं इस्तेमाल करते हम लोग। ऐसे धूप को जलाने से प्राणवायु भी अच्छा हो जाता है और सुगंध भी अच्छा है, बहुत शुद्ध पावन एक वातावरण हो जाता है। तो यह व्रज गोकुलम, धूप और ऐसे बहुत सी चीज़ें, तो आप में से जो लेना चाहें देख सकते हैं, और आपके रिश्तेदार हैं वगैरह और को मित्र हैं उनको भी आप दे सकते हैं। हाँ, तो यहाँ हमारे मैचलिस्ट गिफ्ट शॉप में भी ये उपलब्ध है, ठीक है। तो भक्तों की इच्छा थी कि आज उद्घाटन यहीं पे हो जाए आज के दिन। हरे कृष्णा, कोई सूचनाएं हैं?
हरे कृष्णा। सर्वप्रथम आज के सुंदर कथा के लिए महाराज जी को हम धन्यवाद देंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अब स्वागत करेंगे उन भक्तों का जो आज पहली बार इस मंदिर में आए हैं। जो भक्त पहली बार यहाँ पे उपस्थित है उनसे निवेदन है, कृपया कुछ समय के लिए अपने जगह पे खड़े हो जाइए, कृपया संकोच ना करें। जो भक्त पहली बार आए हैं कृपया खड़े हो जाइए। हम प्रार्थना करते हैं श्री श्री राधा गोकुलानंद जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा तथा गौ नेता से कि वे उनकी कृपा आप सबको प्रदान करें। साथ में यह भी आशा करते हैं आज का दिवस आपके उज्जवल भक्तिमय जीवन का शुभारंभ हो। आइए हम पारंपरिक पद्धति से इन नए भक्तों का भी स्वागत करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कृपया बैठ जाइए। कल गुरु पूर्णिमा है, जैसे कि आपने प्रवचन के दरमियान सुना तो कल शाम को भी महाराज जी यहाँ पे कथा करेंगे और कथा का समय है शाम को 7 बजे। 18 जुलाई से अधिक मास प्रारंभ हो रहा है, सो यह 18 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक अधिक मास होगा और इस अधिक मास में कृष्ण कथा का भी आयोजन हम मंदिर में कर रहे हैं और इस